स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य में नई कविता के बाद कहानी एक ऐसी विधा है जिसने युगीन चेतना को उसकी समग्र जटिलताओं के साथ चित्रित करने की चेष्टा की है। सन 50 के बाद की कहानी को जीवन की जटिलता एवं संकुलता का सामना करना पड़ा है, जिसे अभिव्यक्ति देने के लिए भावबोध के नए स्तरों, सौंदर्य बोध के नए तत्वों तथा यथार्थ के नए धरातलों की उद्भावना करनी पड़ी है। इन नए संदर्भों की खोज ने ही 50 के आसपास सामने आने वाली कहानी को नई कहानी की संज्ञा देने पर विवश किया है। इस नई कहानी से संबद्ध वाद विवाद सबसे पहले पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सामने आया, जिनमें कहानी, नई कहानियाँ, लहर, विनोद, कल्पना के नाम विशेष रूप से लिए जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त कथाकारों ने स्वयं अपने संग्रह के भूमिकाओं में निजी दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के प्रयास में नई कहानी के वस्तु पक्ष तथा शिल्प पक्ष पर आलोक डाला है। नई कहानी के रचना विधान और अभिधान को लेकर काफ़ी मतभेद रहा है। जैनेन्द्र नई कहानी के नएपन से आज तक असहमत है। उपेंद्रनाथ अश्क इन प्रचलित रूपों को मात्र फैशन की संज्ञा देते हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय नए विशेषण से परहेज करते हैं। इनके अतिरिक्त और भी ऐसे विद्वान हैं जो नएपन को अंगीकार करते हुए भी इस आंदोलन को अस्वीकारने के लिए कृत संकल्प दिखाई देते हैं। दूसरी ओर सृजनशील नए कथाकार अपनी कथाकृतियों, भूमिकाओं, चर्चाओं और समीक्षाओं द्वारा इस विधा की पुष्टि करते हैं। यशवी कमलेश्वर, नई कहानी की भूमिका। राजेंद्र यादव, एक दुनिया समानांतर। मोहन राकेश, परिवेश। गंगा प्रसाद विमल, नई कहानी की रचना प्रक्रिया आदि। जो विद्वान इस संज्ञा से असहमत है वे इसे आधुनिक कहानी, आज की कहानी आदि नाम देते हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय कथ्य और कथन दोनों दृष्टियों से इसे पूर्ववर्ती कहानी से भिन्न मानते हैं तथा कहानियां जहां समाप्त होती हैं वहीं से आज की कहानी प्रारंभ होती है। फिर भी उनका आग्रह है कि उसे नई की संज्ञा देना उचित नहीं। इसके पूर्व कि हम नई कहानी के नएपन को स्पष्ट करें, नई कहानी के प्रवर्तन पर भी कुछ विचार कर लेना चाहिए। यद्यपि किसी भी साहित्यिक विधा का आविष्कार किसी निश्चित तिथि तथा व्यक्ति द्वारा नहीं होता, बल्कि उसमें कई समानधर्मी रचनाकारों की सृजन परंपरा का भी उपयोग रहता है। फिर भी ऐतिहासिक संदर्भ में उनके प्रथम प्रयोक्ता को प्रवर्तन का श्रेय दिया ही जाता है। प्रथम नई कहानी और कथाकार का प्रश्न विवादास्पद है। डॉक्टर नामवर सिंह निर्मल वर्मा को पहला नया कथाकार और उनकी परिंदे कहानी को पहली नई कहानी मानते हैं। दूसरी ओर डॉक्टर सुरेश सिन्हा राजेंद्र यादव को पहला कथाकार मानने के पक्ष में है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसका प्रथम प्रयोग 1950 में प्रकाशित डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की कहानी दादी माँ में निर्दिष्ट किया है। निस्संग भाव से देखा जाए तो कमलेश्वर, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा तीनों श्रेय के अधिकारी हैं। इनके अतिरिक्त और भी अनेक कथाकार हैं जो नई कहानी के रूप गठन में अपना भरसक योग देते रहे हैं। दरअसल 50 के आसपास हिंदी गाने क्षेत्र में जिस नएपन ने जन्म लिया वही कोई चमत्कृत कर देने वाला तत्व न होकर सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है जो अपनी साहित्यिक पृष्ठभूमि का परिणाम है। काल गतिमान है, अतः परिवर्तन अनिवार्य है। परिवर्तन जीवन का पर्याय है, गतिरोध की स्थिति मृत्यु है। मानव जीवन की निरस्ता को सरसता में बदलने के लिए नए क्षेत्रों की टोह में रहता है, अतः नूतन की खोज प्राकृतिक, स्वाभाविक और नैसर्गिक है। नया शब्द परिवर्तित रूप को ही इंगित करता है। नव, अभिनव, नूत, नूतन, ये सारे शब्द नए के ही पर्याय हैं। इनका कोशगत अर्थ है जो जीर्ण नहीं है, जो ताजा है, अपूर्व है, अद्भुत है, मौलिक है और आधुनिक है। अंग्रेजी में नए का पर्याय न्यू से है, जिसका कोशगत अर्थ है रिसेंट, हाल का, फ्रेश, ताजा, मॉडर्न, आधुनिक, ओरिजिनल, मौलिक। इस प्रकार हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अर्थों को मिलाकर देखें तो हमारे सामने तीन तत्व आते हैं, ताजा, मौलिक और आधुनिक। ताजा से अभिप्राय है जो बासी नहीं, जिसमें जीवंतता है, स्फूर्ति है, शक्ति है, गति है, जो मृत और स्थिर नहीं है। मौलिक वास्तव में वह है जो अपने में एक दृष्टिकोण को बदलने की सामर्थ्य रखता है, और यह शक्ति उसमें तभी जाएगी आएगी जब उसमें मौलिकता का तत्व होगा। मौलिक अर्थात जो अनुकरण नहीं, आंतरिक भावाभेद का सहज परिणाम है। मौलिकता होगी तो वह नवीन अवश्य होगा। वास्तव में कोई भी वृत्ति जो आंतरिक आग्रह का परिणाम है, किसी भी काल किसी भी स्थान की होगी हो नई होगी। डॉक्टर देवराज के अनुसार नवीनता मौलिकता का ही एक तत्व है। आज आधुनिक और नए को एक ही अर्थ में लिया जा रहा है, परंतु नए की सीमाएं विस्तृत हैं, आधुनिक की संकीर्ण। आधुनिक का संबंध केवल वर्तमान से है, आज से है, जबकि नया किसी भी युग और स्थान का हो सकता है। आधुनिक सामयिकता को प्रकट करता है। नए से अभिप्राय परिवर्तन से है, जो परिवर्तन दृष्टिकोण को अभिव्यक्त देता है वह आधुनिक है। नए में आधुनिकता शामिल है। जिस प्रकार नया गतिशील है, उसी प्रकार आधुनिकता भी स्थिर नहीं। आधुनिकता और नए में समानता यह है कि वह बदलते समय के साथ, बदलते मूल्यों को आत्मसात करते, परिवर्तित दृष्टिकोण का वहन करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नया शब्द ताजा, मौलिकता और आधुनिकता के लिए हुए हैं। नया अर्थात जिसमें ताजगी है, मौलिकता है अर्थात आधुनिक दृष्टि है। जब हम नए शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ है परिवर्तित दृष्टिकोण। यह परिवर्तन जीवन में हो या व्यक्रम में, प्रकृति में हो या साहित्य में, भावबोध में हो या शिल्प में, सभी स्थलों पर घटित होता है। नया काल सापेक्ष शब्द है। जिसे हम आज नया कहते हैं वही कल पुराना पड़ जाएगा, और कल का पुराना कभी नया था, इसमें संदेह नहीं। अतः प्रत्येक क्षण का नयापन भिन्न है। युग की गति में जब प्रश्न, समस्याएं, चिंतन बदल जाते हैं, तब युग के साथ साथ उन प्रश्नों का उत्तर देने, समस्याओं को सुलझाने, चिंतन को दिशा देने वाली चेतना तथा मूल्य भी बदल जाते हैं। जब यह परिवर्तन हमारे सामने आता है तो हम कह उठते हैं युग बदल गया है। डॉक्टर रांगे राघव के अनुसार परिवर्तन का ही दूसरा नाम नया है। यह नई शब्द कथाकारों द्वारा दिया हुआ नहीं है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। कहानी को नई से विभूषित करने वाले हैं डॉक्टर नामोर सिंह। जब उन्होंने कहानी पत्रिका में यह प्रश्न किया था कि क्या नई कविता के समान नई कहानी भी हो सकती है, प्रश्नात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया विशेषण तत्कालीन कहानी के साथ लगा दिया गया, और तभी से कहानी नई कहानी बन गई। तत्कालीन कथाकारों ने कहा कि नई कहानी का रूप उसका अस्तित्व पुरानी कहानी से भिन्न है, वह परंपरागत कहानी का नवीन रूपांतर नहीं, प्रत्युत कथात्मक गद्य का एक नया क्षेत्र है। मोहन राकेश के शब्दों में आलोचना, पुस्तकों में गिनाई जाने वाली पांच विधाओं में कहानी नाम की जो विधा थी, उसकी पहचान के आधार पर आज की कहानी को समझना असंभव है। नई कहानी पुरानी कहानी का नया रूप नहीं है, कथात्मक गद्य का एक नया क्षेत्र है। इसमें युग की सभी वस्तुपरक और कथात्मक अनुभूतियों को लेकर रचना के प्रयोग किए जा सकते हैं और किए जा रहे हैं। कहानी के परिवर्तित रूप, रचना विधान और शैली का वर्णन करना एक बात है, किंतु यह कहना कि वह कहानी नहीं कथात्मक गद्य का नया क्षेत्र है, स्वयं को कहानी के दायरे से अलग करना है। यदि नई कहानी के लेखक इसे कहानी से अलग एक भिन्न विधा मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में इन विशिष्ट कथात्मक गद्य लेखकों का कहानीकार के नाते कहानी की वकालत करने का न तो आधार ही रहता है और न अधिकार है। वास्तव में नई कहानी अपने में विकसित होती आई है। पहले उन्मेष में इसका कोई नाम नहीं था, पर बदलते हुए यथार्थ ने जब मूल्यों की संक्रांति खड़ी कर दी तो नई कहानी ने उसे वहन किया, और प्रेमचंद प्रसाद की कहानी परंपरा को नए अर्थ तथा नए जीवन संदर्भों की ओर अभिमुख किया। नई कहानी की आंतरिक मांग भी यही थी कि उसकी यात्रा जीवन से साहित्य की ओर हो। नई कहानी ने जीवन की सारी संगतियों, विसंगतियों, जटिलताओं और दबावों को अनुभव किया, अर्थात नई कहानी पहले और मूल रूप में जीवनानुभव है, उसके बाद कहानी है। नई कहानी का मूल स्रोत है जीवन, अपनी समस्त जटिलताओं और संश्लिष्टताओं के साथ। यह आकस्मिक नहीं था कि नई कहानी के उन्मेष के साथ ही उसकी साहित्यिक विरासत की खोज में कुछ कहानियों पर से सहज ही आग्रह हटने लगा था। प्रेमचंद और प्रसाद की उन कहानियों पर से सहज ही ध्यान विकेंद्रित होने लगा था जो पाठक समुदाय को कथ्य और कला की दृष्टि से संवेदित नहीं कर पा रही थी। यह भी आकस्मिक नहीं था कि प्रेमचंद की ईदगाह, बड़े घर की बेटी, पंज परमेश्वर आदि कहानियाँ उतनी चर्चा का विषय नहीं रही थी। जीवन के नए और बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद की ही कफन, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी जैसी कहानियों के प्रति समाज आग्रह, सहज आग्रह बढ़ गया था। कहानियाँ नहीं बदली थी, समय की मांग बदली थी और समय की मांग ने ही अपनी थाती में से नए चुनाव किए थे। कथा साहित्य में इस बदलते हुए आग्रह को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और यह बदलता हुआ आग्रह ही वह बिंदु है जहाँ से हिंदी कहानी नया मोड़ लेती है, या नया मोड़ ही नई कहानी के नाम से अभिहित किया गया। साहित्य का आधार जीवन है, किंतु जीवन को साहित्य में अंकित करने की दृष्टि साहित्यकार के भिन्न होती है। स्वतंत्रता के उपरांत आदर्श जीवन दृष्टि की उपेक्षा यथार्थ जीवन चित्रण पर लेखकों ने बल दिया। बल ही नहीं दिया अपितु स्वतंत्रता के उपरांत अस्तित्व में आई नई कहानी का मूल स्रोत ही यथार्थ जीवन है। जीवन के यथार्थ को अभिव्यक्ति देने में ही लेखक अपनी अनुभूति की सार्थकता मानता है, क्योंकि यह उसका वर्णन करता है। वह केवल उसका देखा हुआ जीवन या बाहर से लादा हुआ जीवन न होकर उसका भोगा हुआ जीवन है। वह आसपास के जीवन को प्रामाणिकता और ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करता है, भले ही वह शिव हो या अशिव, उचित हो या अनुचित, ग्राह्य हो या अग्राह्य, उसे वह निरपेक्षता और तटस्थता के साथ प्रस्तुत करता है। सामाजिक भ्रष्टाचार को वह भावुक बनकर आदर्श के आवरण में छिपाता नहीं, प्रत्युत उसे ज्यों का त्यों प्रस्तुत करता है। जैसे उनके दिन फिरे, हरिशंकर परसाई संग्रह की सभी कहानियाँ सामाजिक भ्रष्टाचार का ही उद्घाटन करती हैं। इस संग्रह की कहानियों में व्यंग की प्रधानता है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल की रेलगाड़ी, राजेंद्र यादव की नए नए आने वाले, कमलेश्वर की जाज पंचम की नाक, मोहन राकेश की परमात्मा का कुत्ता आदि कहानियाँ बेईमान, कपटी और रिश्वतखोर अफसरों के चरित्रों को प्रस्तुत करती हैं। जीवन के इस यथार्थ बोध को लेकर चलने वाला है वह विराट मध्य और निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, जो अपनी जीवनी शक्ति से आज इस संकट का सामना करता है, कर रहा है। नई कहानी के अधिकांश कथाकारों ने अधिकतर इसी मध्य और निम्न मध्य वर्ग का चित्रण ही किया है। जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ रहे व्यक्ति को परिवार, समाज और राजनीति में अनेक ठोकरें लगती हैं। कहीं वह टूट गया है, कहीं आगे बढ़ा है। उसके टूटने और उठने को कथाकारों ने वैसे ही प्रस्तुत किया है। आज संबंधों के विघटन का युग है। पारिवारिक मोह छोड़कर युवकों ने संघर्ष क्षेत्र में पग बढ़ाए। उनके अंतर से पारिवारिक मोह नाम की वस्तु चूक गई। यांत्रिक जीवन में रहा तो केवल पैसा और पैसे के संबंध। माँ बाप अपनी मान्यताओं की दुहाई देकर संतान को वर्जनाओं के घेरे में बांधते रहे, किंतु संतान उन मान्यताओं को रूढ़ी मानकर मिथ्या और व्यर्थ सिद्ध कर वर्जनाओं के जाल से मुक्त होकर बाहर आ गई है और अब है उनके हृदय में पूर्व पीढ़ी के प्रति उपेक्षा और तिरस्कार, जो उनकी अपनी मान्यताओं का उपहास करता है। पूर्व पीढ़ी की उपेक्षा बहुत सी नई कहानियों में मिलती है। परसाई की चार बेटे में संतान अपनी माँ पर लांछन लगाती है। कमलेश्वर की कुछ नहीं कोई नहीं में पुत्र पिता के रक्त का प्यासा है। राजेंद्र यादव की शहर के बीच का वृक्ष में भाई बहन को अवांछित जान मरवा डालता है। यद्यपि स्त्री आज आत्मनिर्भर है, स्वतंत्र है, शिक्षित है, लेकिन इतना होते हुए भी उसके प्रेम तथा दाम्पत्य में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। सम्मिलित कुटुंब के अभाव में भी स्त्री और पुरुष के बीच विभिन्न दरारें हैं जो उनकी अपनी बनाई हुई हैं, जो उन्हें अवसाद तथा घुटन देती है। इस अवसाद के मूल में कई कारण हैं, धन का अभाव, एक दूसरे को न समझना तथा किसी तीसरे के प्रति आकर्षण। इन कारणों का परिणाम है भावनात्मक आदान प्रदान की समाप्ति, स्त्री पुरुष के संबंधों का टूटना, एक दूसरे के प्रति उपेक्षा, उदासीनता के कारण कुंठा का जन्म और दोनों ही पक्षों में आंतरिक द्वंद्व और संघर्ष। नई कहानियों में इस प्रकार की कहानियों की संख्या बहुत अधिक है जिनमें स्त्री पुरुष के संबंधों के टूटने के चित्र हैं या इकट्ठे रहने पर ऊब और घुटन का वातावरण है। मोहन राकेश की एक और जिंदगी में अपनी गृहस्थी उनकी गृहस्थी टूट चुकी थी, किंतु विषाद और अवसाद की छाया दोनों के चेहरे पर विद्यमान थी। जीवन की विडंबना और बीते हुए वर्षों को दुख स्वप्न की भांति भुला भी तो नहीं सकते थे। राजा निर्बंसिया में कथा की नायिका अर्थाभाव के कारण पति की बीमारी में स्वयं को समर्पित करती है। राजेंद्र यादव की एक कमजोर लड़की की कहानी वह कहानी है जिसमें लड़की अपने प्रेमी और पति दोनों के प्रति ईमानदार रहना चाहती है, लेकिन इस द्वंद्व में वह दोनों में से किसी के प्रति भी ईमानदार नहीं रह पाती। इसके अतिरिक्त सुहागिने, उर्मिल जीवन, मोहन राकेश, अंधेरे में निर्मल वर्मा, एक कटी हुई कहानी राजेंद्र यादव आदि कहानियाँ इसी वर्ग की हैं। आज के इस यांत्रिक युग में व्यक्ति भीड़ में भी अकेला पड़ गया है। ऊंची आकांक्षाएं लिए हर पुरुष अनेक प्रकार के प्रयत्न करता है, हाथ पैर मारता है, लेकिन उसकी आकांक्षाएं पूर्ण नहीं होती। सपने बिखर जाते हैं, वह टूट जाता है, उसके पास रह जाता है अवसाद, घुटन और बढ़ता हुआ धुआं। इस प्रकार की विभिन्न कहानियां हैं जिनमें अजनबी शहरों में परिचय की आकांक्षा लिए हुए युवक भटकते हैं, किंतु उन्हें मिलता है अपरिचय, भटकाव और अकेलापन। वे स्त्रियां जो किसी न किसी पुरुष की बन सकी, न किसी को अपना बना सकी, कभी पारिवारिक बोझ के कारण और कभी मानसिक मोहबंधों के कारण अकेलेपन और कुंठा के भार को ढोने के लिए विवश हैं। संपर्कों की तलाश में वे पराजित मनोभाव लिए निराशा और विषाद में घिरी रहती हैं। राजेंद्र यादव की टूटना का नायक अपनी हीनता के कारण अकेलेपन का भार सहन करता है। कमलेश्वर की खोई हुई दिशाएं के युवक को अपनी पत्नी से पूछना पड़ता है कि क्या वह उसे पहचानती है। निर्मल वर्मा की जलती झाड़ी में अजनबियत के बोझ से छुटकारा पाने का हल केवल मृत्यु ही पाता है। मोहन राकेश की मिस पॉल खाली डिब्बू और पथरीली चट्टान के समान उदास और वीरान जीवन बिता रही हैं। अकेलेपन की व्यथा और पराजय की घुटन आज के जीवन का अभिशाप है और इस शाप को आज का मानव झेल रहा है। वह सबकी उपस्थिति में भी अकेला स्वयं एक वीराना बना हुआ है। इनके अतिरिक्त निर्मल वर्मा के सितंबर की एक शाम, मारकंडे की रेखाएं, कमलेश्वर की पराया शहर, राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा जैसी कहानियां अकेलेपन के अभिशाप को ही व्यक्त करती हैं। नई कहानियों में परिवेश बहुत अधिक है। वस्तुतः परिवेश ही मनुष्य को चेतना देता है। किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष वातावरण में ही मनुष्य कुछ अनुभव करता है। यदि उस परिवेश को अलग कर दिया जाए तो कथ्य में जीवन नहीं रहेगा। कहानी की सफलता इसी में है कि उसके परिवेश और पात्र को अलग न किया जा सके। नई कहानी में व्यक्ति और परिवेश में पूरा सामंजस्य और संतुलन है। इन कहानियों में परिवेश जन्य विविधता देखने को मिलती है। रेणु ने कहानी को आंचलिक परिवेश दिया है। श्री प्रसाद सिंह, मारकंडे और कमलेश्वर की प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण परिवेश है। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कृष्ण बलदेव वैद्य, भीष्म साहनी, कृष्णा शोभती ने कहानी को नागरिक परिवेश दिया है। निर्मल वर्मा, राजकुमार और उषा प्रेमवदा ने कहानी को विदेशी रंग में संवारा। इन सभी कथाकारों की कहानियों में वातावरण और व्यक्ति को अलग करके नहीं देखा जा सकता। स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर आने की प्रक्रिया में नई कहानी में सांकेतिकता एक अनिवार्य तत्व के रूप में दिखाई पड़ती है। संश्लिष्टता को ग्रहण करने का आग्रह, मन के अनेक स्तरों को एक साथ पकड़ने की आकांक्षा के कारण नई कहानी में सांकेतिकता की एक अनिवार्य स्थिति बन गई है। अधिकांश नई कहानियों में कथाकार के भावों को अभिव्यक्त करने वाले संकेत ढूंढे जा सकते हैं। ये संकेत कथा को उलझाते नहीं, उसे स्पष्टता प्रदान करते हैं। मोहन नागेश की मलबे का मालिक का संकेत युग सत्य को अभिव्यक्त करता है। मलबा उन टूटती हुई मान्यताओं, मिथ्या, रूढ़ियों की ओर संकेत करता है जिसे आज भी प्रगति के युग में व्यक्ति रखे पहलवान की तरह छोड़ नहीं पा रहे हैं। निर्मल वर्मा की अंतर कहानी में पूरी कहानी में यह लगता है कि वे आपस में प्रेम करते थे, किंतु कहानी की अंतिम पंक्ति का यह संकेत यह स्पष्ट कर देता है कि उसके प्रेम के मूल में उस युवक के प्रति गहरी घृणा थी। इसलिए उसने उसी तरह लाई सारी चीज़ें खिड़की से बाहर फेंक दी थी। इस अंतर्मन में छिपी घृणा से वह स्वयं भी अनजान है। एक छोटा सा गर्म आंसू उसकी आंखों के कोरों से बहता हुआ उसके बालों में खो गया, किंतु पता नहीं चला, वह आराम से सो रही थी। इन कहानियों के अतिरिक्त राम कुमार की छत, मोहन राकेश की जानवर और जानवर, निर्मल वर्मा की प्राय सभी कहानियों में सांकेतिक अभिव्यक्तियाँ देखी जा सकती हैं। यथार्थ किसी युग का ही नहीं होता, किसी क्षण विशेष का भी हो सकता है। नया कथाकार किसी विशिष्ट घटना की प्रतीक्षा के लिए बैठा नहीं रहता, प्रत्युत कोई वृहत क्षण उसके लिए विशिष्ट हो सकता है। काल की गति में क्षण का महत्व कम नहीं। लेखक का सामर्थ्य इस बात में है कि वह उस क्षण की परिणति किस प्रकार करता है, किस प्रकार उसे पकड़ता है। कभी कभी तो कोई विशिष्ट क्षण जीवन की गति ही बदल डालता है। निर्मल वर्मा की तीसरा गवाह में कोर्ट रूम में शादी के लिए बैठे नीरजा ने उसी क्षण फैसला किया लिया और वहाँ से चली गई। कथाकार के शब्दों में कोई भूला भटका सा क्षण आता है जब मन फैसला कर लेता है। हर छोटा सा फैसला एक लंबी राह तक घिसटता रहता है और जिंदगी खत्म हो जाती है। इस एक क्षण के फैसले ने उसके संपूर्ण जीवन को ही बदल डाला। रघुवीर सहाय की मेरी और नंगी औरत के बीच कहानी का संपूर्ण तथ्य ही वस्तुतः कुछ क्षणों की प्रक्रिया है जो उसके मस्तिष्क में उस औरत को देखने की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ। नई कहानी आधुनिक संवेदनाओं की अनुभव धर्मा कहानी है, जिसे पूर्ववर्ती कहानी वहन करने में सक्षम नहीं है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के शब्दों में वह बदलते हुए जीवन को पकड़ने और व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। नए कथाकारों ने क्षणवाद द्वारा मूड की वैचारिक स्थिति अर्थात मनोदशा का अंकन करके क्षण को बांधने का उपक्रम किया है, जिसमें अनुभूति का विस्तार भी है और त्वरा का आस्वाद भी। डॉक्टर बच्चन सिंह का आरोप है कि ये कथाकार सार्त्र की बोली बोलते हैं और कामों की नकली खाल ओढ़े हैं, अर्थात मात्र अनुकर्ता हैं, पर सत्य यह है कि वे सहभोक्ता भी हैं। यूँ नई पीढ़ी हरदम असंतोष का विषय रही है, पर वह कुछ ऐसा करती आई है जो पिछले नहीं कर पाई। वह ऐसा क्या है, इस पर डॉक्टर साहब मौन है। मुझे तो यह ऐसा वैसा कुछ भी नज़र नहीं आता। क्या आज भी पुरानी चीज़ों को नहीं घसीटा जा रहा? घसीटा जा रहा है। इसीलिए डॉक्टर विजय मोहन सिंह ने कहा है कि फिलहाल की कहानियाँ पिछले दशक का शॉट हो रही हैं, हाल के वास्तविकता से बहुत दूर है। यही ठीक है कि नई कहानी में अनेक अनुभवों का, बल्कि जीवन के समस्त संदर्भों का सामंजस्य एक ही बिंदु पर दिखाई देता है। यही कारण है कि नई कहानी की विषय वस्तु को अनेक केंद्रीय विचारों से अलग समझने की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है। नई कहानी में व्यक्त रागात्मक अनुभव भी बौद्धिक अनुभव की ही निष्पत्ति है। नए कथाकार के विषय क्षेत्र विविध हैं, पर उस समस्त विविधता में लेखक का व्यक्तित्व अनिवार्यता बना रहता है। नई कहानी की कोई सीमा है तो बौद्धिकता, जिसके कारण कहानी में दुरूहता आती है और कहानी का मूल गुण बाधित होता है। निस्संदेह यथार्थ के प्रति नए कथाकार की दृष्टि भावात्मक न होकर बौद्धिक है। इसीलिए नवलेखन का अस्तित्व बोध अतिकल्पित अथवा आरोपित लगता है। इसकी अंतः प्रतीति आधुनिक परिवेश में जीने वाले हर व्यक्ति को हो रही है। मैं तो मानने को तैयार नहीं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अस्तित्व का यह तावीज नकली है, क्योंकि अस्तित्व का खतरा विदेशों में है, भारत में नहीं। नई कहानी के वैचारिक स्तर तथा दर्शन को लेकर जो प्रश्न उठाए गए हैं, उस संबंध में डॉक्टर सुरेश सिन्हा का कहना है, ज्ञानी जनों का कहना है कि नई कहानी का अपना न कोई दर्शन है और न वैचारिक स्तर है, जो है भी वह सार्त्र, कामू या काफ्का आदि पश्चिमी लेखकों के उधार लिया गया है। उसे भारतीय संदर्भ में देखना भूल है। इन बातों को नई कहानी को प्रतिष्ठित करने के उत्साह में उपेक्षित नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ वर्षों में अनेक ऐसे कहानीकार हुए हैं जिनकी रचनाओं में यह बात सत्य सिद्ध होती है, पर उन्होंने नई कहानी की प्रतिनिधि रचनाएं स्वीकारना उस दुराग्रह एवं कुत्सित मानसिकता का द्योतक है, जो नई कहानी का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकारने को प्रस्तुत नहीं। वास्तव में इन तथाकथित कहानीकारों की रचनाएं नई कहानी की परंपरा से ही नहीं, जीवन की मूल भावधारा से भी इसलिए कटी हुई हैं क्योंकि उसमें अस्वस्थ मानसिकता, अकेलेपन एवं अजनबीपन की लादी गई सांकेतिकता, आस्थाहीनता एवं दिमागी कुंठा आदि प्रवृत्तियां जीवन के बारीक रेशों में न खोजे जाकर फार्मूले के रूप में ऊपर से लाद कर कहानी का फॉर्म देने की चेष्टा की जाती है। ये कहानियाँ आधुनिक मैखानों, काफ़ी हाउसों या फिर स्क्वायर और पर्वती डाक बंगलों में रूप लेती हैं और चियांती स्कॉच बियर या कॉफ़ी पीते हुए पात्र अस्तित्व की चिंता में समस्त हवा में मुक्के उछालते हुए या शीशे के गिलासें तोड़ते हुए पाए जाते हैं, और मज़ा यह है कि उस पर समष्टिगत चिंतन का लेबल लगाने की बड़ी नायाब कोशिश की जाती है। इसीलिए डॉक्टर नामोर सिंह जैसे मूर्धन्य आलोचक अपने सिद्धांतवादिता की कसौटी कभी तो मारकंडे के साथ और अंत में निर्मल वर्मा को अंतिम सत्य मानकर मसीहाओं की भांति कभी प्रक्रिया, कभी मूल्य, कभी प्रगतिशीलता, कभी प्रतिक्रियावादिता, कभी दायित्वबोध की निर्वाह और कभी उपेक्षा को उद्देश्य सिद्ध कर फतवे देने लगते हैं। वास्तव में यह कलात्मक कौशल के जीनी आवरण को भेदने की असमर्थता का ही परिणाम होता है। इस संबंध में उल्लेखनीय बात यह है कि नई कहानी के अपने जीवन दर्शन का सुनिश्चित स्वरूप न होना पूरे साहित्य से संबंधित है। आज हमारे भारतीय समाज में दर्शन को लेकर इतनी विपन्नता की स्थिति व्याप्त है कि हम कोई दिशा प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। आज की परिवर्तित स्थितियों, नवीन संदर्भों, अभिनव यथार्थ परक सामाजिक परिवेश में व्यक्ति की जो स्थिति हो गई है और उसके सोचने समझने के स्तर पर संक्रमण की जो स्थिति आई है, उसे दर्शन के सूत्रों में बांधने या कोई वैचारिक स्तर प्रदान करने की आधुनिक असमर्थता एक बहुत बड़ा कारण है कि हम आज भी बुद्ध, शंकराचार्य या विवेकानंद की ओर देखते हैं और उनका भारतीकरण करने का प्रयास करते हैं। किंतु यह कहने का अभिप्राय नहीं है कि नई कहानी पश्चिम की अनुकृति है। कहना मैं यह चाहता हूँ कि उन मानदंडों या स्तरों को जिन पर आधुनिक पश्चिमी दार्शनिकों एवं विचारकों ने अपने यहाँ के जीवन को देखने या समझने की दृष्टि निर्मित की है, हमने पूर्णतया उपेक्षित या तिरस्कृत नहीं किया है। चूँकि हमारे आधुनिक जीवन की परिवर्तनशीलता का एक बहुत बड़ा हिस्सा पश्चिमी चेतना के संस्पर्श और प्रभाव के कारण ही हुआ है, इसलिए उस दर्शन या वैचारिक स्तर में अनेक ऐसी बातें सरलता से प्राप्त हो जाती हैं जिन्हें लेकर नई कहानी ने अपना सर्वथा एक नया जीवन दर्शन गढ़ा है, उसे अस्वीकारा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर देखा जाए तो हिंदी के अधिकांश नए कथाकार दूसरों की कहानियों को चुनौती मारकर उनसे बेहतर कहानी लिखने का दम्भ भरते हैं, अतः उसमें अपने या अपने आसपास की जिंदगी ही नहीं आती तो भारत के दूसरे क्षेत्रों में क्या आएगी। धीरे धीरे नई कहानी प्रेमिका और पत्नी के रिश्तों तक ही सिमटती चली गई। माता पिता के संबंधों का एक कृषक का दूसरे कृषक या एक मजदूर का दूसरे मजदूर से संबंधों और व्यापक रिश्तों को लेकर कम कहानियाँ लिखी गई। इसके बारे में डॉक्टर विजय मोहन सिंह ने एक सही टिप्पणी की है कि मैं मानता हूँ कि बदले रिश्तों की कहानियाँ लिखी जा रही हैं, लेकिन अब फार्मूला बनकर कोल्ड डेड एंड पर जा चुकी है। बदले हुए रिश्ते के नाम पर घोर रोमानी व्यभिचार और करप्शन की कहानियाँ पेश की जा रही हैं। आखिर बदले हुए विक्षुब्ध यूथ की मनोस्थिति पर कोई कहानी क्यों नहीं आ रही है? गुरु शिष्य और यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज पर कोई कहानी क्यों नहीं लिखी जा रही? दुनिया भर में जिस अनरेस्ट की चर्चा है, हिंदी में उस पर रचना क्यों नहीं होती? नक्सलवाद या इसी तरह के पॉलिटिकल सोशल अनरेस्ट की सिचुएशन की कहानी क्यों नहीं लिखी जा रही? कुल मिलाकर हिंदी कहानी की जितनी दयनीय तथा हास्यास्पद स्थिति इस समय है, उतनी कभी नहीं थी। आज़ादी के बाद के 25-30 वर्षों से दो ढाई दर्जन अच्छे कहानीकार उभरे थे, वे या तो कहानी रचना से ऊब चुकी हैं या छोटी छोटी कस्बाई पत्रिकाओं के छोटे कहानीकार बनकर रह गए हैं।